लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सह जिम्मेदारी के संकेत रूप में सभी तरीकों से धर्म सभा की जीवन शैली को बनाए रखे तथा पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों के बीच भागीदारी, एकता और मिशन को बढ़ावा दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, दुनिया में जितनी भी चीजों का निर्माण किया गया है या जितनी भी चीजें अस्तित्व में हैं, एक दिन समय के साथ खत्म हो जाएंगी। दुनिया की हकीकत यही है। भौतिक चीजें जो आज अपने अस्तित्व में हैं, आने वाले दिनों में अपने अस्तित्व खो देंगी या अपने को दूसरे रूपों में विकसित करेंगी। श्रोताओं, वर्ष के 33वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन पाठों में हम इसी सच्चाई की चर्चा पाते हैं। यीशु स्वयं हमें दुनिया में होने वाले परिवर्तन और उसके अंत के बारे में जिक्र करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि हम अपने इस भौतिक जीवन को किन मनोभावों के आधार पर जीते हैं। क्या हमारे जीवन में होने वाला परिवर्तन हमें भयभीत और विचलित करता है? क्या इस भौतिक जीवन में होने वाला परिवर्तन, दुनिया का अंत, अपनी मृत्यु को लेकर हम अपने को सदैव सजग या तैयार पाते हैं?
उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, पर मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में इस हकीकत को स्वीकार करने में मदद करे कि इस धरती में हमारा जीवन क्षण भंगुर है। हम यहाँ आज हैं, कल नहीं रहेंगे। अतः हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने हितों से ऊपर उठते हुए अपने को उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकें जहाँ हमें एक दिन निश्चित रूप में जाना है।
नीले
श्रोताओ, नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए दुनिया के अंत और पुनरुत्थान का जिक्र करता है। यह हमारे लिए दुनिया में घोर संकट के बारे में कहता है, लेकिन उस घोर संकट में भी वे लोग बच जाएंगे जिनका नाम पुस्तिका में लिखा गया है। वे लोग जो मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। श्रोताओं, नबी दानियल के ग्रंथ से लिए गए उपयुक्त पद हमें ईश्वर के श्रेष्ठ प्राणियों की भांति इस धरती पर हमारे जीवन के उद्देश्य को देखने और चिंतन करने का आह्वान करता है। अर्थात ईश्वर ने हमें यह जीवन इसीलिए दिया है कि हम इस दुनिया में अपने भले कार्यों के माध्यम उनकी सेवा पूजा और उनकी महिमा तथा स्तुति करें, जिससे हम इस भौतिक जीवन की समाप्ति उपरांत उनके संग स्वर्ग में अनंत आनंद के सहभागी बन सकें। संत मत्ती के सुसमाचार का अध्याय 25 हमारे लिए इसकी चर्चा करता है, जहां ईश्वर अपने आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियों को अपनी दाहिनी ओर जो भेड़ों के रूप में हैं, बकरियों से अलग करते और उन्हें अपने अनंत निवास में सहभागी होने हेतु बुलाते हैं। श्रोताओं, यह हमें अपने जीवन जीने के तौर तरीकों पर मनन चिंतन करने का आह्वान करता है। ईश्वर ने हमें प्रेम किया है और हमें यह सुंदर जीवन का दान दिया है। उन्होंने हमें अपनी खुशी से भर दिया है, जिससे हम उस प्रेम में अनुभव होने वाली खुशी को अपने कार्यों के माध्यम दूसरों के संग साझा कर सकें। ईश्वर के जिस प्रेम की अनुभूति हम अपने हृदयों की गहराई में करते हैं, वे केवल हमारे जीवन तक सीमित ना हो, बल्कि यह उनके बीच में प्रसारित हो जो अपने को दुख तकलीफों से ग्रसित पाते हैं। श्रोताओं, हमारे जीवन के इस रहस्य को इब्रानियों के नाम से लिया गया आज का दूसरा पाठ अच्छी तरह व्यक्त करता है। यीशु ख्रिस्त हम मानव जाति के लिए पापों के खातिर एक ही बार बलि चढ़कर हमें अपने अनमोल लोहू से पवित्र किया है और हमें सदा के लिए जीवन की पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इस भांति हमारे जीवन में सच्ची खुशी और शांति का कारण हमारा पाप मुक्त होना है, जिसे यीशु ने हमारे लिए अपने क्रूस मरण और अपने पुनरुत्थान द्वारा प्राप्त किया है। श्रोताओं, जब हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते और अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करते हुए पश्चाताप करते हैं, तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। फलस्वरूप हम अपने हृदय की गहराई और अपने मन दिल में शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। यह शांति और खुशी हमें दूसरों के लिए अच्छे कार्य करने को प्रेरित करता है, क्योंकि हम त्रित्वमय ईश्वर के निवास स्थल बनते हैं। हमारी शांति हमें दूसरों के जीवन में शांति स्थापित करने को अग्रसर करती है, क्योंकि हम शांति दाता पवित्र आत्मा ईश्वर से प्रेरित और संचालित किए जाते हैं। श्रोताओं, यह ऐसी बात नहीं कि हम यह नहीं जानते कि इस जीवन में हम भलाई और नेक कार्य करने हेतु बुलाए गए हैं, लेकिन जानते हुए भी यह हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें ईश्वर के संग संयुक्त होते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने की जरूरत है। यह पवित्र आत्मा है जो हमें अच्छे और भले कार्य करने हेतु प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने सूर्य के अंधकार में होने, चंद्रमा में प्रकाश की समाप्ति और तारों के टूटने और आकाश की शक्तियां विचलित होने की बात सुनी। एक तरह से देखा जाए तो ये मानव में व्याप्त शक्तियों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराते हैं, जहां हम अपने सुंदर और भले कार्यों के द्वारा दुनिया को प्रकाशित करने हेतु बुलाए गए हैं। अपने उन्हीं भले कार्यों के द्वारा हम ईश्वर के द्वारा दुनिया के अंत में भेजे गए दूतों के संग स्वर्ग राज में एकत्रित किए जाएंगे। प्रभु हमें अंजीर के पेड़ से शिक्षा लेने को कहते हैं, जो समय और ऋतु परिवर्तन के कारण अपनी टहनियों को कोमल बनाता और फल देने के लिए तैयार होता है। आइए हम अपने जीवन की शाखाओं को ईश्वरीय प्रेम और शांति से पोषित होने दें, जिससे हमारे जीवन के द्वारा भी जरूरतमंद लोगों के लिए अच्छा और मीठा फल उत्पन्न हो सके और इस भांति अपने लिए ईश्वर का दिन निकट आने पर हम अपने को उनके साथ उनके स्वर्ग राज्य में सहभागी होने के योग्य पाएं।
ये विश्वास है मेरा, जो होता है पूरा सपना ये मेरा, अब रहेगा ना अधूरा। ये विश्वास है मेरा, जो होता है पूरा सपना ये मेरा, अब रहेगा ना अधूरा। उसके संग हम रहेंगे, उसकी पूजा हम करेंगे, उसके संग हम रहेंगे, उसकी पूजा हम करेंगे।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को स्पेन के सेमिनरी छात्रों से कहा कि सेमिनरी वह स्थान है जहां हम सीखते हैं कि एक पुरोहित एक उद्धारक है। 16 नवंबर को संत पापा ने पंपलोना, तुदेला, सन सेबास्टियन और रिदमतोरिस मातेधम प्रांतों के सेमिनरी छात्रों से वैटिकन में मुलाकात करते हुए कहा कि सेमिनरी एक कैद नहीं बल्कि एक सीखने का स्थान है, कि पुरोहित एक उद्धारक है, क्योंकि एक पुरोहित मुक्तिदाता यीशु की जीवित छवि के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मुक्तिदाता होने का अर्थ बतलाते हुए संत पापा ने कहा कि कई चीजों में से एक है कि उन्हें कैद खानों में जाना है और वहां के कैदियों को सांत्वना का तेल एवं आशा की अंगूरी प्रदान करना है, जिसको भले समारितानी ने छोड़ दिया है। संत पापा ने उन्हें न केवल बाहरी कैद खानों में जाने बल्कि उन बंद स्थानों में भी जाने की सलाह दी जहां हमारे समाज के स्त्री और पुरुष विचारधाराओं, नैतिकताओं, शोषण, निराशा, अज्ञानता और ईश्वर के प्रति विस्मृति से बने कैद खानों में बंद हैं। संत पापा ने कहा, यीशु हमसे यही कहते हैं कि हम अभिषेक पाते हैं ताकि उन लोगों को मुक्त कर सकें जो अनजाने ही बंधनों से जकड़े हुए हैं। सेमिनरी के छात्रों को संत पापा ने बतलाया कि सुसमाचार लेखक संत लूकस अध्याय 4 में भविष्य के पुरोहितों को तैयारी के लिए एक सुंदर चिंतन प्रदान करते हैं। वे हमें पौत्रात्मा के प्रति विनम्र बनने, ईश्वर से मिलने के लिए निर्जन प्रदेश या एकांत स्थान बनाने, अपने आप को उन बहुत से चीजों से खाली करने की बात करते हैं जिन्हें हम बोझ के रूप में ढोते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपने गांव नाजरेत गए जहां दुनिया की नजर में वे हमारे समान केवल जोसेफ के बेटे थे। संत पापा ने कहा, उसी तरह सेमिनरी के छात्रों को अपने मूल को नहीं भूलना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए कि हम लोगों के बेटे हैं। इस तरह संत लूकस हमें सिखलाते हैं कि हम लोगों के बीच अपने आप को अलग नहीं रख सकते, खासकर जब वह नवागंतुक हो या हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि ईश्वर की नजरों में हम सभी बच्चे हैं। दूसरी ओर संत पापा ने कहा कि यीशु ऐसे लोगों से दुखी थे जो अपने हृदय की कठोरता के कारण बुरी आत्मा के चंगुल में फंसी महिला को मुक्त करने हेतु यीशु की चिंता को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि उनके विपरीत वे हमेशा आशीर्वाद देने और स्वतंत्र करने के लिए तैयार थे और क्रूस पर यीशु ने यही किया, अपने हृदय और अपने भुजा पर हमारे घाव को अंकित किया, अपने प्रेम से हमारी मृत्यु को नष्ट किया और अपने दुख दर्द से उस खाई को पार किया जो हमें ईश्वर से अलग करती थी। संत पापा ने सभी सेमिनरी छात्रों को प्रोत्साहन दिया कि जिस प्रेरिताई के लिए प्रभु ने उन्हें चुनकर उन पर अपनी ईश्वरीय दया बरसाई है, उससे निभाने में वे साहसी, निस्वार्थ और अथक बने। और अंत में उन्हें अपना प्रेरित का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उन्हें माता मरियम को सुपुर्द किया। इटली की पहली धर्माध्यक्ष धर्म सभा के प्रतिभागियों को प्रेषित अपने संदेश में संत पापा ने कलीसिया से आग्रह किया है कि वह अपनी सिनोडल यात्रा के नबी होने के चरण को जारी रखे, पौत्र आत्मा के प्रति खुला रहे, एकता के मार्ग पर चले तथा आनंद और साहस के साथ सुसमाचार को जिए।
प्रेरितिक वाटिकन पुस्तकालय के संरक्षित और दूसरों तक पहुंचाने के लिए पढ़ा गया संवाद में पुस्तकालय नामक सम्मेलन के करीब 100 प्रतिभागियों को संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में स्वागत किया। संत पापा ने कहा, वाटिकन पुस्तकालय कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबंधित संस्थानों के साथ बातचीत करना चाहती है और उसने अध्ययन समूहों की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि ये जारी रहेंगे और आपके आपसी समृद्धि के लिए फलदायी होंगे। संत पापा ने कहा कि उनके संस्थानों को अतीत की विरासत को सार्थक तरीके से नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है, जो एक तरल संस्कृति में डूबी हुई है और इसलिए उन्हें ठोस, रचनात्मक, स्वागत करने वाले और समावेशी वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें वे वर्तमान में अंतर्दृष्टि और भविष्य के लिए आशा करने में सक्षम नए संश्लेषण बना सकें। संत पापा फ्रांसिस ने संत पापा पीयूस 11वें का उदाहरण दिया, जिन्हें कुछ विद्वान लाइब्रेरियन पोप कहते हैं। वे परमाध्यक्ष बनने से पहले मिलान के अम्ब्रोसियन लाइब्रेरी और बाद में वाटिकन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। संत पापा पीयूस 11वें ने वाटिकन लाइब्रेरी का विस्तार किया, व्यवस्थित सूची में दर्ज करने हेतु बढ़ावा दिया और लाइब्रेरियन के प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल खोला। संत पापा ने अपने प्रेरितिक उद्बोधन एवांजेली गाउडियम में उल्लेखित 4 सिद्धांतों को उनके चिंतन हेतु प्रस्ताव दिया। पहला, समय, स्थान या जगह से बड़ा है। संत पापा ने कहा कि वे ज्ञान और शिक्षा के विशाल खजाने के संरक्षक हैं। ये ऐसे स्थान बने जहां हमारे अस्तित्व के आध्यात्मिक और पारलौकिक आयाम के प्रति चिंतन और खुलेपन के लिए समय निकाला जाए। इस तरह वे तत्काल परिणामों के प्रति आसक्त हुए बिना दीर्घकालिक अध्ययन का पक्ष ले सकते हैं और इस प्रकार मौन और ध्यान को बढ़ावा देकर एक नए मानवतावाद के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, संघर्ष पर एकता की जीत होती है। संत पापा ने कहा कि अकादमिक शोध अनिवार्य रूप से कई बार विवाद को जन्म देता है, जिस पर गंभीर, ईमानदार और सम्मानजनक चर्चा होनी चाहिए। पुस्तकालयों को ज्ञान के सभी क्षेत्रों के लिए खुला होना चाहिए। तीसरा, वास्तविकताएं विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। विचार और अनुभव, तथ्य और सिद्धांत, अभ्यास और सिद्धांत के बीच किसी भी झूठे संघर्ष से बचने के लिए आलोचनात्मक और विचारवान दृष्टिकोण बनाए रखते हुए ठोस और यथार्थवादी निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। चौथा, संपूर्ण भाग से बड़ा है। संत पापा ने कहा कि हमारा काम हमें स्थानीय और वैश्विक हितों के बीच तनाव को समेटने के लिए कहता है। हमारा जीवन सामाजिक रिश्तों और नेटवर्क पर आधारित है, जो हमारी जिम्मेदारी पूर्ण भागीदारी की मांग करता है। अपने संबोधन को समाप्त करते हुए संत पापा ने कहा, आप कभी भी इस दुनिया की जटिलता से घबराए नहीं, जिसमें आप काम करने के लिए बुलाए गए हैं। और विश्व गरीब दिवस मनाने से पहले शनिवार 16 नवंबर को संत पापा फ्रांसिस ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, कमजोर लोगों का शोषण करना एक गंभीर पाप है, एक गंभीर पाप जो भाईचारे को नष्ट करता है और समाज को तबाह करता है। यीशु के शिष्यों के रूप में हम दुनिया में सुसमाचार का खमीर लाना चाहते हैं। आइए हम ईश्वर को सबसे पहले रखें, साथ ही उन लोगों को भी जिन्हें वे विशेष रूप से प्यार करते हैं, गरीब और कमजोर लोग। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।